प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है ये कार्यक्रम सत्य वचन।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें एक विश्वासी के लिए करना उचित नहीं, क्योंकि वह मसीह में एक नई सृष्टि है। उसने पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब पौलुस फिर से निषेधाज्ञाओं पर आ जाता है जिनके बारे में उसने पद 17 में चर्चा आरंभ की थी। तो इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम और दया के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम आपके वचन में से सीखते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हम आज के वचन के द्वारा आपके आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, उन पर भी अपने अनुग्रह प्रदान करें, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, अपनी चंगाई प्रदान करें। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आप मेरे साथ इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद को निकालिए। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। ध्यान दीजिए, विश्वासी से कहा गया है कि वह अन्य जातियों का सा चाल चलन न रखे। शेष पत्री में अब यही निर्देश दिए जा रहे हैं, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यह अन्य सब निर्देशों में प्रमुख है। जब पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया और त्याग दिया गया है, तो उसके साथ झूठ बोलने वाली जीभ और धोखा देने वाला मन भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। हमारे लिए यीशु की क्रूस की मृत्यु का एक कारण यह भी था कि हम झूठ बोलते हैं। हमें सदा सच बोलना चाहिए। भजन संहिता 116 उसकी 11 पद में दाऊद कहता है, मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने वर्षों पूर्व डॉक्टर W.I. केरल से यह पद सुना था। उन्होंने कहा कि दाऊद ने उतावली में ऐसा सोचा था। उन्होंने कहा कि इस पर बहुत समय विचार किया और अंत में दाऊद की बात से सहमत हुए। मेरे मित्रों, कलीसिया में सच बोलने से अनेक समस्याओं का समाधान होता है। मैंने तो बहुत पहले ही मसीही क्षेत्र में झूठ को सुधारने का विचार त्याग दिया है। मैंने यह देखा है कि इस काम में मैं पूरा जीवन निवेश कर दूंगा। विश्वासी एक देह के अंग हैं, इसलिए सच बोलना आदेशात्मक है। कहने का मतलब कि यह आदेश है। क्रिस्तोस्तंभ ने इस तथ्य को एक अति व्यंग्यात्मक रूपक से प्रकट किया है, आंख पांव से झूठ नहीं बोले और पांव आंख से। यदि एक गहरे गड्ढे को घास से ढक दिया जाए तो आंख को वहां ठोस भूमि दिखाई देगी। क्या आंख पांव से टटोल कर नहीं देखेगी कि वह खोखला है या ठोस भूमि है? क्या पांव झूठ बोलेगा या सच को यथावत व्यक्त करेगा? क्या आंख सांप या एक जंगली जानवर को देखकर पांव से झूठ बोलेगी? मेरे प्रियो, पांव आंख को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वे दोनों एक ही देह के अंग हैं, और न ही आंख पांव को धोखा देगी। इसी प्रकार कलीसिया में सदस्यों के बीच विश्वास योग्यता और सत्य का होना आवश्यक है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। विश्वासी को क्रोध करने की अनुमति है, परंतु कुछ लोगों के साथ और कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन। अब आप ध्यान से सुने, सच के युद्ध में कोई भी विश्वासी तटस्थ नहीं रह सकता। आज का प्रचलित विचार है कि उसे हर परिस्थिति में मधुर होना है, ऐसा नहीं है। उसे झूठ बोलने वाली और व्यर्थ की बात करने वाली जीभ से घृणा करना है, विशेष करके विश्वासी की। परंतु वह जन्मजात घृणा और मन में बैर रखकर उससे घृणा न करे, जैसा पत्रस कहता है। विश्वासी के जीवन में बैर भाव नहीं होना है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 1 पद में हम पाते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव दूर करके। बैर भाव को जमा हुआ क्रोध कहते हैं। जब गलती का सुधार किया जाए तो उसमें बैर भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। क्षमा करो और भूल जाओ के सिद्धांत का पालन करें। घृणा और पाप की भावना हमारे जीवन में शैतान को अनुचित लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है। बहुत से मनुष्यों में ऐसा स्वभाव है कि वे भूल नहीं पाते, वे क्षमा नहीं कर पाते। मेरे मित्रों, यदि कोई झूठ बोलना छोड़ दे तो हमें उसे क्षमा करके भूल जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने भी क्रोध किया था। उसने आराधनालय में एक लकवे के रोगी को चंगा किया। उसके क्रोध का कारण था कि फरीसियों ने उसे परखने के लिए उस रोगी को वहां रखा था। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। प्रभु यीशु फरीसियों पर क्रोधित था कि उन्होंने ऐसा कपट का काम किया। यह भी कहा गया है कि परमेश्वर दुष्टों से सदैव क्रोधित रहता है, परंतु जिस पल वे दुष्टता से मन फिराते हैं और उसके निकट आते हैं, वह उसी पल उनका उद्धार करता है। एक विश्वासी का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी कलीसिया में परेशानियां, कड़वाहट, घृणा और गुटबंदी थी। उस कलीसिया में अनेक पास्टर आए और चले गए, परंतु अभिभावक कई वर्षों से वहीं पर थे। एक आगंतुक जो उस कलीसिया की दशा जानता था अभिभावक से कहने लगा, आप इन परिस्थितियों में भी कैसे अब तक यहाँ पर रुके हुए हैं? उसने उत्तर दिया, मैं तटस्थ बन गया और इधर से उधर होता रहा। अधिकांश विश्वासियों का सोचना है कि यही मसीही व्यवहार है। क्या मैं कहूं, कोई भी विश्वासी तटस्थ नहीं हो सकता है। हम एक महान युद्ध में हैं, जैसा हम इस पत्री में आगे चल करके देखेंगे। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय उसके 28 से 29 पद में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। मनुष्य अपने पापी स्वभाव से चोर और झूठा है। जब मैं छोटा था तब कुछ बुरे लड़कों की संगति में रहता था। उनमें मैं ही एक अच्छा लड़का था। तरबूज की फसल आ जाने पर हम तरबूज चुराते, अमरुद चुराते। किसान हमें स्वयं दे सकता था, परंतु चुरा कर खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हमने बगानों में से अमरुद और आम के पेड़ों में से आम चुराए हैं। ठंड के मौसम में हम अंडे चुराकर और उबाल कर भी खाते थे। हमसे कुछ नहीं बचता था। मेरे प्रियो, मन परिवर्तन के बाद भी मुझ में यह उमंग थी। एक बार मैं किसी से भेंट करने जा रहा था। उसके पास तरबूज का एक अति उत्तम खेत था। मुझ में उस खेत से एक तरबूज ले लेने की इच्छा प्रबल हुई। मैं रुक कर उस खेत से तरबूज लेना चाहता था, परंतु मेरे मन में एक आवाज उठी, ठहरो, मैं तो खेत के मालिक से ही भेंट करने जा रहा हूं, वह मुझे स्वयं ही दे देगा। चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने उसे अपने इस परीक्षा के बारे में बताया, तब वह बहुत हंसा और बोला, यदि तुमने खेत में कदम भी रखा होता तो मैं तुम्हें गोली मार देता, क्योंकि मेरे तरबूजों की बहुत चोरी हो रही है, वे आज बहुत महंगे हो गए हैं। चोरी करना हमारी प्रवृत्ति है, हम स्वभाव से ही ऐसे हैं। पौलुस कहता है कि हमें चोरी नहीं करना है, चाहे वह उचित ही प्रतीत क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। विश्वासी को स्वार्थी होकर धनवान नहीं बनना है, उसे अपनी अधिकता में से मनुष्यों की सहायता करना है। आज मसीही सेवा में सेवकों को पैसे की कमी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अनेक विश्वासी अपने स्वार्थ के निमित्त पैसा बचाकर सेवा में अंशदान नहीं करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, गंदी बात अर्थात दुराचार के शब्द। विश्वासी के मुंह में अनियंत्रित जीव भ्रष्ट जीवन का संकेत है। वे विश्वासी से संदिग्ध कहानियां सुनाते हैं, दुष्ट मन को प्रकट करते हैं, मन के उद्गार मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं। विश्वासी के वचन अन्य विश्वासियों के लिए निर्देश और प्रोत्साहन के ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। मनोरंजन का अपना स्थान है, परंतु हमारा मनोरंजन गंदा और अशुद्ध न हो। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय के 30 पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को दुख होता है, उसे कष्ट देने वाली बात क्या है? यहां अपराधों की सूची है। विश्वासी झूठ बोलता है तो पवित्र आत्मा को दुख होता है। किसी को दुख देने का क्या परिणाम होता है? सहभागिता टूट जाती है। पवित्र आत्मा को दुखी करेंगे तो वह आपके जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ आपकी सहभागिता टूट जाती है। जिससे तुम पर छाप दी गई है, इसका अर्थ यह है कि हम पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं, परंतु हम उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वह हम पर छप चुका है। यह कैसी अद्भुत बात है! आप नया जन्म पाते ही पवित्र आत्मा की छाप में आ जाते हैं। छुटकारे के दिन के लिए। जी हाँ, वह उस दिन के लिए आप पर छाप लगाता है जिस दिन वह आपको प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विश्वासी उसकी मुहर को मिटा नहीं सकता, परंतु उसे दुखी कर सकता है। आज विश्वासियों में एक बड़ा अंतर है। कुछ विश्वासी दुखी पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, तो कुछ पवित्र आत्मा को दुख दिए बिना। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे मित्रों, ये दो अंतिम पद एक दूसरे के विपरीत हैं। पद 31 में पवित्र आत्मा को दुख देने वाली बातों की अतिरिक्त सूची है, ये भावनाओं के पाप हैं। इसके विपरीत पद 32 में परमेश्वर हमसे जो भावनात्मक प्रतिक्रिया चाहता है वे दी गई हैं। कड़वाहट मन की वह संवेदनशील दशा है जिसके कारण हम किसी के प्रति कठोर मनोधारणा विकसित कर लेते हैं। एक बार एक विश्वासी ने आकर बताया कि वह किसी और विश्वासी के घर में क्या सोचता है। वहां एक और विश्वासी उपस्थित था। उसने मुझसे कहा, आप इसकी बात पर अधिक ध्यान न दें, उसका मन कड़वाहट से भरा हुआ है। बहुत से लोग कड़वाहट से भरे मन के उद्गार प्रकट करते हैं, जिन्हें सुनकर दुख होता है, इससे पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। प्रकोप और क्रोध आवेग का प्रदर्शन है। विषभ मूल इन दोनों शब्दों में अंतर प्रकट करता है। प्रकोप उग्र मनोवेश का प्रदर्शन है, तो क्रोध एक पुराने मनोवेग का। कलह अर्थात अधिकारों और शिकायतों की साहसी अभिव्यक्ति। कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे यदि पास्टर हाथ न मिलाए तो वे शिकायत करते हैं कि उसने उन्हें अनदेखा किया। कभी कभी तो वे काल्पनिक अनादर पर भी कलह और रोष प्रकट करते हैं। कौन कह सकता है कि पास्टर भाग भाग कर हर एक को प्रसन्न रखने के लिए हाथ मिलाता फिरे। यही स्वभाव पवित्र आत्मा को दुखी करता है। निंदा अर्थात किसी के बारे में बुरी बातें करना, वैर प्रकट करना आदि सब गाढ़ी घृणा है। तुम से दूर की जाए, ये सब पाप विश्वासियों से दूर हो, विलग किए जाएं। नए नियम की मूल भाषा यूनानी में यह एक बार का सदा के लिए निर्णायक काम है कि पवित्र आत्मा को दुख न दिया जाए। हमें संकल्प करना है कि इन पापों को हम दूर करें। मेरे प्रियो, अब आता है स्पष्ट अंतर। हो जो विश्वासियों में गंभीर परिवर्तन प्रकट करता है, जिसके कारण उसके जीवन में रिक्त स्थान न हो। कृपालु और करुणामय हो अर्थात मसीही शिष्टाचार। करुणामय कृपालु से अधिक प्रबल शब्द है। इसका अर्थ है गहरा और मृदु लगाव। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, वे बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। वे आपको देखते ही अपनी बाहें आपके गले में डाल देते हैं। मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ कॉलेज में और प्रचार कार्य में रहा है, परंतु अब वह सेवा से निवृत्त है। एक दिन वह मुझे मिला तो हमने बाहें फैला दी और एक दूसरे का आलिंगन किया। हम दोनों एक दूसरे पर करुणामय हैं। हम दोनों प्रभु में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो अर्थात स्वयं एक दूसरे को क्षमा करो। हमें किसी के दोष उजागर करने की अपेक्षा उसे क्षमा कर देना चाहिए, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे पाप क्षमा किए। इसे दो परिप्रेक्ष्यों में करना है। पहले तो यह कि पवित्र आत्मा दुखी न हो, दूसरा वैधानिक क्षमादान न हो, वह अनुग्रह से पूर्ण हो। यह व्यवस्था में निहित क्षमादान नहीं है, परंतु मसीह की मृत्यु द्वारा हमें क्षमादान या क्षमा करने में परमेश्वर के अनुग्रह के प्रदर्शन के आधार पर है। हमें क्षमा इसलिए करना है कि हम क्षमा किए गए हैं, न कि इसलिए कि हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा किया जाएगा। यहाँ विषमता पर ध्यान दें। पर्वतीय उपदेश में प्रभु यीशु क्षमा का वैधानिक आधार प्रस्तुत कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। परंतु यहाँ इफिसियों की पत्री में हमें उस अनुग्रह के कारण किसी को क्षमा करना है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें क्षमा करके प्रकट किया। यह अति अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 में देखते हैं, जिसका विषय है कलीसिया दुल्हन होगी, कलीसिया की मंगनी, कलीसिया का अनुभव, कलीसिया की आशा। यहाँ अलग अलग रूपकों को संयोजित किया गया है। अध्याय 4 में कलीसिया को नई सृष्टि कहा गया है, अब कलीसिया को दुल्हन कहा जाएगा। इस अध्याय का ध्यान केंद्र भविष्य की ओर है। कलीसिया एक दुल्हन बनेगी। आज कलीसिया दुल्हन नहीं है, कलीसिया एक नई सृष्टि है जो इस पृथ्वी पर वास कर रही है। वह मसीह की दुल्हन होने के लिए ठहराई गई है, परंतु अभी उसके साथ नहीं है। जी हाँ, यह उस समय होगा जब वह उठा ली जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 2 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अतः हमें इस पृथ्वी पर एक दुल्हन की नाई रहना है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस यही कहता है, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान प्रभु को सौंप दूं। जिस लड़की की मंगनी हो जाती है वह अन्य पुरुषों को समय नहीं देती, उनमें रुचि ही नहीं रखती है। अतः हम जिसकी बात प्रभु से लगाई जा चुकी है सांसारिक जीवन कैसे जी सकते हैं। एक दिन हम प्रभु को सौंप दिए जाएंगे और अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। वह हमारा प्रभु और स्वामी होगा। तो आइए हम आगे देखेंगे कलीसिया की मंगनी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ध्यान दीजिए, इसलिए इस अध्याय को पिछले अध्याय से जोड़ता है जहां विश्वासी का आचरण देखा गया था और मसीही आचरण के निर्देश थे। इन निर्देशों का कलीसिया पर विशेष प्रभाव है क्योंकि एक दिन वह निर्दोष और निष्कलंक प्रभु को सौंप दी जाएगी। ऐसा ऊंचा और गर्वान्वित लक्ष्य जो पूर्ण रूप से मसीह का काम है, आज यहाँ एक शुद्ध आचरण की अनिवार्यता है। मेरे प्रियो, हम देख चुके हैं कि पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में अंतर्वास करता है और मुहर लगाता है, परंतु हम उसे दुखी कर देते हैं। यदि हम अध्याय 4 पद 31 में वर्जित काम करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम परमेश्वर की संतान नहीं है। उद्धार से रहित संसार कभी नहीं मानेगा कि हम परमेश्वर की संतान है, तथापि हम पर मुक्ति के दिन के लिए पवित्र आत्मा की मुहर है, उस तक जब पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रभु को सौंपेगा। इस लक्ष्य के कारण हमें पवित्रता का जीवन जीना आवश्यक है। एक विश्वासी को परमेश्वर की नकल करना है, विशेष करके क्षमा करने में, परंतु यह मसीही आचरण के हर एक क्षेत्र में लागू नियम है। अन्य जातियां जिनका आचरण पहले निम्न स्तर का था, अब प्रेम के एक ऊंचे स्तर पर लाई गई है। वे अब प्रिय संतान कहलाती है। जिस प्रेम के स्तर पर वे लाए गए हैं वह उस प्रेम का स्तर है जो प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम करके दर्शाया कि हमारे लिए स्वयं को एक बलिदान वरन एक आहुति स्वरूप दे दिया, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा। हमारे लिए आपको सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यह क्रूस का स्पष्ट संदर्भ है। यह प्रभु यीशु की मृत्यु को एक अपराधी की मृत्यु से अधिक कुछ और प्रकट करता है। क्रूस उस पीतल की वेदी का प्रतिरूप है जहां मेमना होम बलि किया जाता था। यह बलि संसार के पाप को उठा लेती है। यह प्रभु यीशु को पुराने नियम में व्यक्त परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रत्येक बलिदान के तुल्य दर्शाता है। पुराने नियम के सब बलिदान प्रभु यीशु की ओर संकेत करते थे। यह प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए गए उस बलिदान के संदर्भ में है जो उसने हमारे स्थान पर अपनी जान देकर चढ़ाया, और विश्वासी को प्रेम का यह स्तर पाना आवश्यक है। विश्वासी पवित्र आत्मा को दुखी करके जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो जीवन में इस फल को उत्पन्न कर सकता है। आपको स्मरण रखना है कि गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 पद में आत्मा का फल है जिसमें प्रेम सबसे पहले है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में जांच करके देखें, परख करके देखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं एक नए मनुष्यत्व के रूप में जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, आप मेरी सहायता करें। जी हाँ, इस वचन के प्रकाशन में बढ़ें और परमेश्वर निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा हा।